týka मैं पहली बार कर्नाटक के समस्याओं के ऊपर आपके सामने खड़ा हूं। कर्नाटक में जो बीजेपी की जो नाटक चल रही है और खासकर बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार एमएलए को तोड़ फोड़ के सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, एमएलए को डराना धमकाना और इनकम टैक्स का डर बताना, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का डर बताना और जितने भी संस्थाएं उनके पास है, चाहे वो सीबीआई हो, सीवीसी हो, ऐसे संस्थाओं का डर बता के लोगों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और उन्हीं के एमएलए को हिफाजत करने के लिए वो गुरुग्राम में राख के इलाके रखे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि संक्रांत को क्रांति होगी, तो क्रांति तो नहीं हुई, संक्रांत तो अच्छा हुआ। लेकिन ये बीजेपी के हमेशा एमएलए को खरीदना, पहले भी ऐसा ही उन्होंने किया था कर्नाटक में, लोटस ऑपरेशन, और उसको बहुत कोशिश करके उन्होंने सरकार बनाने की येडियुरप्पा ने कोशिश की थी। लेकिन जब वो असेंबली में गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, वो खाली हाथ वापिस आए, वहाँ फेल हुए। अब फिर ये कोशिश इस बार चली है और इसको बीजेपी के अध्यक्ष जी और बीजेपी की सरकार बहुत जोर लगाई है। हमारे सारे 118 एमएलए इंटैक्ट है, कोई किधर जाने वाला नहीं है। जिन उसूलों पे उन्होंने चुन के आया है, उन उसूलों को लेकर वो मजबूती के साथ कांग्रेस में खड़े हुए हैं। लेकिन पेपर में, टीवी में, हर जगह ऐसे अफवाहें फैला, बीजेपी फैला रही है कि उनके पास 10 है, 15 है, 20 है, बम्बई में है, दिल्ली में है, कहीं कहीं जगह के नाम बताकर वो लोगों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को कहते हैं कि अब 11 हो गए, आप आ गए तो 12 हो जाते। तो बहुत से एमएलए उनको ये भी पूछे, एक दो जिनको उन्होंने कोशिश की, भाई पहले 11 बताओ, उसके बाद में 12वां कोई तो नाम आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अफवाहें उठा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एमएलए का उनको एक भ्रम में रखा जा रहा है। तो यहाँ मैंने खुद ही चीफ मिनिस्टर से बात किया, उन्होंने भी यही कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं और मीडिया में गुमराह करके यहाँ पर एक भ्रम फैला रहे हैं। दूसरा, मैं केसी वेणुगोपाल जी से भी बात किया, जो इंचार्ज सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी यही बताया, चिंता की कोई बात नहीं है। डिप्टी सीएम से बात किया और वहां के जो सीनियर लीडर्स है, डीके सुकुमार है, एचके पाटिल है, दूसरों से भी बात किया और जिलावार भी मैं जिस जिले के उन्होंने नाम लेकर अपना कुछ कोशिश बढ़ाना चाहते थे वहां पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रेशर सरकार के पास जो हथियार है उसको इस्तेमाल करके एक प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसीलिए ये जो उनका हमेशा काम रहा है कि पब्लिसिटी करके ज्यादा से ज्यादा पेपरों में, अखबारों में, टीवीओं में खबर लाकर ये घबराहट पैदा करने की कोशिश उनकी जो है वो नहीं होगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट मजबूत है, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है और वो चलेगी। ये कोएलिशन गवर्नमेंट को कोई धक्का नहीं लगा सकता। और तीसरी बात, आपको ये भी मालूम है कि ये पहली बार हमसे कर्नाटक में नहीं हो रहा। देश में बीजेपी ने हमेशा ये कोशिश की है, चाहे वो गोवा का हो, मणिपुर को हो, उत्तराखंड का हो और अरुणाचल का हो। आपको सभी को मालूम है कि उनको किसी ढंग से तोड़ फोड़ के जोड़ना, सरकार कर लेना उनकी इच्छा है, लेकिन उसमें कभी भी वो कर्नाटक में कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा जो आदमी झूठ बोलते जा उस पर किसी का विश्वास नहीं रहता। तो ये कांग्रेस मजबूत है ये बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ और सारे देश के जनता को भी मैं अपील करूँगा कि वो देखें किस ढंग से एक स्टेबल गवर्नमेंट को वो हटाना चाहते हैं और किस ढंग से उनको उनका शोषण करना चाहते हैं, शासकों को डराना धमकाना चाहते हैं। ये भी देश के जनता के सामने आपके माध्यम से रखना जरूरी था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और कांग्रेस जेडीएस के सारे नेता भी मिल रहे हैं, हमारी पार्टी की भी सीएलपी मीटिंग भी परसों हो रही है, उसमें सभी लोग एक जगह आएंगे, इकट्ठा होकर पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। वहाँ सरकार हिल रही है, डुल रही है, आज जा रही है, कोई एक घंटे में बोलते हैं, कोई 24 घंटे में बोलते हैं, कोई 48 आवर्स में बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते बोलते वो लोग हर जगह अपनी कोशिश को जारी रखे। अगर इतने मजबूत अगर होते तो आप अपने MLAs को गुरुगांव में क्यों रखते हैं, गुरुग्राम में, पंचतारा होटल में, 5-star 7-star होटल में आप उनको रख के क्यों उनकी रक्षा कर रहे हो? छोड़ दो, आप तो लोकतंत्र में विश्वास करते हो और लोकतंत्र के तहत चलने की शिक्षा बोधन सबको करते हो, आप क्यों नहीं अपने MLAs को छोड़ रहे, वहाँ पकड़ के रखे हैं? आप बेचारे परेशान हैं। हमारे पास संक्रांत बहुत बड़ा फेस्टिवल है कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, तो ऐसे वक्त भी उनको यहाँ पर ला के रखा गया है। तो इसी पे समझिए आप कौन कमजोर है। तो मैं ज़्यादा फिर ना बताते हुए दूसरा, एक जावड़ेकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जुलाई के बाद में एडमिशन देंगे क्योंकि मई में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तब तक ये जुमला चलेगा जुलाई तक। अरे संविधान में तो ये है आर्टिकल 15 में ये क्लियरली लिखा है, आर्टिकल 15(5) गोज वन स्टेप फर्दर एंड एम्पावर्स द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन इन एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस वेदर आर नॉट एडेड बाय गवर्नमेंट. तो एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये तो पहले से संविधान में, उसको अमल में लाना था, अमल में नहीं लाया. शेड्यूल कास्ट को ही नहीं दिए और अपर कास्ट को जुलाई में देने की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन टल जाए. तो ये हमेशा ये एक नए नए जुमले बनाते रहते हैं. उसमें से एक जुमला जावड़ेकर साहब के मुंह से आया है. अगर इतनी गरीबों को मदद करने की आपके पास उदारता है तो हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन एससी एसटी के लिए लड़े. वो बिल आया था, रुक गया. ये 4 साल में क्यों नहीं लाया, 4.5 साल में? और बैकलॉग वैकेंसीज क्यों फिलअप नहीं किए? तो ये चीजें जो उनके हाथ में है वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, वो अनुष्ठान में नहीं ला रहे, लेकिन दूसरे दूसरे जुमले बोलते जा रहे. तो इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि उनके जुमले बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं. तो ये सब खास करके मैं कर्नाटक के लिए बोलूंगा कि जो भी आज मीडिया में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है. सरकार मजबूत है, सरकार चलेगी, सरकार को चलाएंगे. धन्यवाद. हाँ बोलिए सर.
वेणुगोपाल जो प्रभारी है, उन्होंने एक रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को दी जिसमें पहले से अलर्ट किया गया था और ये भी कहा गया था कि कुछ रिजेंटमेंट है, उसको इग्नोर किया गया, तभी ये स्थिति बनी है. इसमें कितनी सत्यता?
देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट होती है, किसी को मिनिस्टर नहीं बनाए तो नाराज होता है, उसको समझाना बुझाना, ये तो पार्टी में, हर पार्टी में चलते रहता है. तो ये इससे कोई ये नई चीज नहीं किसी पार्टी में. हाँ, अलबत्ता बीजेपी अब इधर इधर बोलने का ही बंद की है, तो उनमें नहीं हो सकता. जिस पार्टी में बोलने की इजाज़त है, मांगने की इजाज़त है, लोगों से मिलने की इजाज़त है, वहाँ ज़रूर थोड़ा होता है, लेकिन उसको सॉल्व करने में हम लोग समर्थ हैं. उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं बीजेपी को.
इसी से संबंधित है, पार्टी ने माना है सर, इसी से संबंधित है
सर. सीबीआई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने,
एक मिनट रुक जाए, पहले जो सो मोटर्स पर आप
खड़गे जी, कर्नाटक में ये तो खुद पार्टी ने माना है कि उनके 4 से 5 विधायक मुंबई में हैं, उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, तो बयान कर लिया था.
ये देखिए, 4 से 5 जो गए वो अलग अलग, कोई शिरडी साई बाबा गया है, कोई बम्बई में वहाँ पर शादी के नाते गया है, तो उनको सबको मिलाकर वो पूछ कर रहे हैं कि वो गया ये गया. अब बहुत से लोग, एक दो लोग वापस जाकर वहाँ पर स्टेटमेंट भी दिए, हम कहीं नहीं गए थे. एक ने कहा मैं शिरडी में था क्योंकि सब फैमिली को लेके, दूसरे ने ये कहा कि मुंबई में मेरा काम था, मैं चले गया था, मैं वापिस आ रहा हूँ. तो नहीं नहीं, ये वो सत्य है. दो इंडिपेंडेंट नहीं नहीं, विड्रॉ सपोर्ट दोनों ने किया, क्योंकि उनको कोई दिक्कत ये थी कि वो 3 महीने तक मिनिस्टर था, किसी वजह से उसकी मिनिस्ट्री गई, वो नाराज होकर चले गया. देखेंगे, छोड़ दीजिए, जितने भी हमारे जेडीएस और कांग्रेस के मिल के जो एमएलए है वो इंटैक्ट है. थैंक यू.
आपने कहा कि कुछ एमएलए को सरकारी एजेंसियां परेशान कर रही हैं, क्या ऐसे एमएलए को बताया, इनकी संख्या लगभग कितनी होगी जिनको इनकम टैक्स को रिलीफ परेशान?
देखिए, ऐसा डरा धमकाने का पूरा, जरा आप भी जांच कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि किस किस को डराया बुलाया गया, ऐसे अगर मैं पूरे नाम बताते गया हूँ तो बहुत बहुत, तो संख्या कभी ये तो सच है कि डराना धमकाना तो आपको भी मालूम है, तो ये कर रहे हैं कोशिश. तो वो उसको डरने वाले भी नहीं है हमारे लोग।
सर एक सवाल सीबीआई पे, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस दी है कि फॉर्मर जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा और उनकी टीम ने एनएसए अजीत डोवाल का भी अवैध रूप से फोन टैप किया था।
देखिए वो डिटेल्स मुझे मालूम नहीं, मैं सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में रहता हूँ और जब हटाने का वक्त है तो उस वक्त जब कमेटी बुलाती है तो उस वक्त मैं जाता हूँ। लास्ट टाइम उन्होंने हमको नहीं बुलाया और वैसा ही उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, दूसरे जगह भेजा था, हम उसको गलत कह के लेटर लिखा, लेकिन कोर्ट ने भी वही कहा कि यह गलत है, जो DOPT का ऑर्डर है वो भी गलत है, जो CVC का आरोप है वो भी गलत है, इसीलिए ये दोनों आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज किया। खारिज करके उसने ये कहा कि इनको रेस्टोर कीजिए, उन्होंने कहा, तो वो रेस्टोर करने के लिए जो कमिटी बिठाना चाहिए तो बिठाइए, उन्होंने कहा, तो उसमें कोई ये बात आती नहीं है। तो वो जो रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक उन्होंने नहीं किए तो उसी लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकारा मिला है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूँगा।
सर पहले येदियुरप्पा ने सर सरकार बनाने के लिए कौओं को दाना खिला दिए, अब वो पूजा पाठ कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए।
कौन?
येदियुरप्पा।
नहीं भाई देखो, उनका वैयक्तिक पूजा पाठ करो, मंत्र पढ़ो, जो कुछ करना है आपको, व्यक्ति स्वतंत्र है इस देश में, सबको अपने अपने लिहाज से रहने का स्वतंत्र है, लेकिन मोदी जी उस स्वतंत्र को भी छीनना चाहते हैं, लेकिन हम उसके बारे में कमेंट नहीं करते। वो पूजा करने दो, याग करने दो, यज्ञ करने दो, मंदिर में जाने दो और एकांत में बैठने दो, उसके हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कितना भी बैठे तो अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी में कितने लोग आपके साथ है वो देखा जाता है, ना कि आप कितने घंटे वहाँ बैठे हैं, उसका कोई महत्व नहीं
है। सर, मैं
पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस की रैली है उसमें क्या राहुल जी नहीं जा रहे और उनके प्रतिनिधि के तौर पे आप जा रहे
हैं? देखो वो तो पार्टी के स्पोक्स पर्सन बताएंगे, मैं सिर्फ इसी के लिए आया था, ये दो चीज बताने के लिए मैं आपको बता। थैंक यू, धन्यवाद।
महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया था,
बीजेपी एक्सप्लेनेशन फॉर कीपिंग इट्स एमएलए इन दैट गुरुग्राम रिसॉर्ट इज दैट अलेजिंग कांग्रेस एंड जेडीएस इज ट्राइंग टू फॉस्ट्रेट देयर एमएलएस। कांग्रेस जेडीएस आल्सो एडमिटेड दैट दे आर इन टच विद सम बीजेपी एमएलएस। आर यू इन टच विद बीजेपी एमएलएस? आर दे विलिंग, आर यू विलिंग टू गेट?
देखो हम किसी को बुला रहे नहीं, अगर कोई आया तो दरवाजा भी बंद नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो गुरुगांव में क्यों लाए आप ही पूछिए उनको, जब आपकी गवर्नमेंट सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहाँ आपको कह रहे हैं मेजोरिटी है, फिर डर किस बात की है भाई, क्यों बचा रहे हैं? तो थैंक यू वेरी मच।
एक महबूबा मुफ्ती पर सवाल था।